المرسلين وخاتم النبيين سيدنا الممجد وبشيرنا المؤيد المصطفى الأمجد محمود الأحمد بالقاسم محمد وصاحب دعوة النبوية وصولة الهيدرية والإسمة الفاطمية والهلم الحسنية وشجاعة الحسينية والصبر السجادية والآثار الباقرية والمعاصر الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائمة بأمر الله في محكم كتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلاة تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے جو انسان کا خلق کرنے والا ہے جو خالق بھی ہے مالک بھی ہے رازق بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا حاکم و سرپرست اور ولی بھی ہے. قرآن اللہ کی ولایت کو جا بجا بیان کر رہا ہے. سورہ شورا میں ارشاد ہوا ام اتخذوا دونہ اولیاء فاللہ وہو الولی وہو یحیی الموتا وہو علی کل شیء قدیر. کیا تم اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا ولی مانتے ہو؟ ولی تو بس اللہ ہے, وہی مردے کو زندہ کرے گا اور وہی ہر شے پر قادر ہے. پھر اللہ کی ولایت کو سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی مناجات ہے. اس مناجات میں کس طرح اللہ کی ولایت کا ذکر ہوا کہ فاطر السماوات والارض انت ولی الدنیا فی الاخرت توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین, کہ اے زمین اور آسمان کے بنانے والے دنیا و آخرت میں تو ہی میرا ولی ہے, تو ہی میرا حاکم و سرپرست ہے, مجھے دنیا سے مسلمان اٹھا اور نیک کاروں میں صالحین میں شامل فرما. پھر سورہ آل عمران کے اندر اللہ کی ولایت کو بیان کیا گیا کہ اللہ ہو ولی المومنین اور اللہ مومنوں کا ولی ہے. اب یہ ساری آیات اللہ کی ولایت کو بیان کر رہی ہیں, لیکن فلسفہ ولایت کے عنوان سے सरनामे कलाम की जो आयत हम मुसलसल बयान कर रहे हैं वो अल्लाह की विलायत के साथ साथ कुछ और विलायतों का जिक्र करती है। जैसे कि इरशाद हो रहा है सूरह मायदा में कि इन्नमा वलीकुम अल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना युक़ीमून अस्सलात व युतून ज़कात व हुम राकिऊन, के बस तुम्हारा वली अल्लाह है, उसका रसूल है और वो साहिबान ईमान जो नमाज कायम करते हैं और हालत रुकू में ज़कात अदा करते हैं। और हम रिवायतों से तारीख से वाज़ह कर चुके कि वो अली इब्न अबी तालिब की ज़ात है। अब अल्लाह ने ये जो सबसे बड़ा मनसब विलायत था उसकी बारगाह में, देखिए मनसब विलायत सबसे अजीम मनसब है, रिसालत नबुवत इमामत ये विलायत ही की तजल्ली है, ये विलायत ही का रंग है, असल मनसब विलायत ही का है। और इस मनसब में अल्लाह ने अपने साथ किसकी विलायत को शामिल किया, रसूल और अली। ये वो हस्तियां हैं जो अल्लाह के फजलो करम, उसके लुत्फ इनायत और इम्कान की तखलीक का वसीला है। जिस तरह पानी जिंदगी का वसीला है, सूरज की रोशनी नबातात की रुश्द नशोनुमा का जरिया है, बाप औलाद का वसीला है, उसी तरह से ये हस्तियां जिनकी विलायत को अल्लाह अपने साथ बयान कर रहा है, ये हस्तियां कायनात की तखलीक का वसीला भी है और अल्लाह के लुत्फ करम का वसीला भी है। गो के अल्लाह वसीलों का मोहताज नहीं है, तखलीक के लिए भी वो वसीले का मोहताज नहीं है। वो बगैर पानी के जिंदगी अता कर सकता है, बगैर सूरज के नबातात को परवान चढ़ा सकता है, बगैर बाप के औलाद पैदा कर सकता है। तो अब मोहताज नहीं है, असल खालिक अल्लाह ही है। लेकिन उसकी हिकमत यह है कि आलम के लिए, दुनिया के लिए मुदब्बिर और मखलूक को फैज पहुंचाने के लिए किसी को वसीला करार दे। तो अब ये रसूल और ये अली, इनकी विलायत ये अल्लाह का वसीला है उसका लुत्फ करम पहुंचाने के लिए, मखलूक तक उसका फैज पहुंचाने के लिए इनकी विलायत ये वसीला है। और विलायत ना सिर्फ अल्लाह के लुत्फ इनायत का वसीला है, उसके साथ साथ वो नेमत है अल्लाह की जिसके मुतालिक तुमसे कयामत के दिन सवाल किया जाएगा। सूरह तकासुर में इरशाद हो रहा है सुम्मा लतसअलन्ना यौमिज़िन अनिन नईम, के तुमसे उस रोज सवाल किया जाएगा नईम के मुतालिक, नेमतों के मुतालिक। मुफस्सरीन ने बयान किया कि ये नईम से मुराद दुनियावी नेमतें हैं जिनके मुतालिक पूछगछ होगी, बासपुरस होगी, सवाल किया जाएगा। लेकिन शिया मुफस्सरीन के मुताबिक, इमामिया मुफस्सरीन के मुताबिक नईम से मुराद दुनियावी नेमतें नहीं है, बल्कि नईम से मुराद विलायत अहले बैत है जिसके मुतालिक तुमसे बासपुरस की जाएगी, सवाल किया जाएगा। और इस हवाले से रिवायत हमें नजर आती है वो ये कि जब कयामत के दिन हिसाब किताब हो चुका, जन्नत में जाने वाले जन्नत के लिए तैयार हो रहे हैं, जहन्नुम में जाने वाले जहन्नुम के लिए धकेले जा रहे हैं, ऐसे में एक सदा बुलंद होगी, एक आवाज गूंजेगी और सूरह साफात में शायद हो रहा है कि वो सदा क्या कहेगी, वाकिफू इन्नहुम मसलून, इन्हें रोको, इन्हें ठहराओ, इनसे कुछ सवाल किया जाएगा। ये आवाज जो होगी ये पैगंबर की आवाज होगी और जो सवाल होगा वो विलायत के मुतालिक होगा कि हमने जिन्हें तुम्हारा हाकिम और वली बनाकर भेजा उनकी विलायत को कबूल किया कि नहीं, उनकी इताअत का हक अदा किया कि नहीं। अब जब विलायत का सवाल होगा उस आखिरी मंजिल पर, उसके बाद हतमी फैसला है किसने जन्नत की तरफ जाना है, कौन जहन्नुम में जाने वाला है। यानी विलायत मयार है जन्नत और जहन्नुम को तकसीम करने के लिए। अली को कसीमे नारेबाज जन्नत क्यों कहा गया, इसलिए कि अली की विलायत मयार है, जो विलायत को कबूल करने वाला है उसके लिए है जन्नत, जो इस फैज इलाही से महरूम है वो जहन्नुम की तरफ धकेला जाएगा। तो विलायत वो नेमत है जिसके मुतालिक सवाल होगा, विलायत वो वसीला है जिसकी वजह से तुम्हें अल्लाह का लुत्फ करम तुम तक पहुंचता है। अब देखिए जब हम विलायत कुल्ली की बात करते हैं, मुकम्मल विलायत मुकम्मल इख्तियारात की बात करते हैं, आम तौर पर लोग जितना इस आयत के अंदर बयान हो रहा है ना कि तुम्हारा वली अल्लाह है, उसका रसूल है और अली है, आम तौर पर लोगों की विलायत की गाड़ी अली पर आकर रुक जाती है। और ये जो विलायत तकवीनी और विलायत तशरी हम मुसलसल बयान कर रहे हैं कि कुल इख्तियारात कुल इल्म कुल ताकत अल्लाह ने इनको अता की है, तो आमतौर पर लोगों का अकीदा यह है कि बस ये जो विलायत का जिक्र हो रहा है ये अली तक है। लेकिन हमने बयान किया, हम शुरू में वादे कर चुके हैं कि विलायत कुल्ली जिस तरह रसूल के पास है, अली के पास है, अली के बाद आने वाले हमारे तमाम मासूम आयमा उसी तरह विलायत के हामिल हैं।
नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे सलवात,
अली की विलायत तो फिर कबूल कर लिया जाता है, लेकिन इस पर बहस रहती है कि क्या आयमा के पास भी वो इख्तियारात वो विलायत है कि नहीं। तो याद रखिए कि हमारा हर इमाम अपने जमाने का वली है, हर इमाम विलायत कुल्ली का हामिल है, हर इमाम तमाम इख्तियारात तमाम ताकतें और इल्म रखता है, और अगर जब रखते हैं तो बारहा इख्तियारात की झलक भी दिखाई है, बारहा अपने इल्म की झलक भी दिखाई है। जाबिर हाफी इमाम मोहम्मद बाकर इस्लाम के एक सहाबी है और वो बयान करते हैं कि इमाम की खिदमत में जा रहे थे, रास्ते में सोचते जा रहे थे, क्योंकि चूंकि हाथ तंग था उनका, तंदरुस्ती का जमाना था, तो उन्होंने कहा कि आज जाकर इमाम की खिदमत में सवाल करूंगा। इमाम की खिदमत में पहुंचे और इमाम के सामने अपनी तंदरुस्ती बयान की। इमाम ने अपनी जेब से 2-4 दिरहम निकाले और जाबिर के हवाले कर दिए और उसके बाद खामोशी से बैठ गई। इतने में एक और शख्स आया, उसका नाम था कमियत अल्दी, मशहूर शायर था उस जमाने का और इमाम का कसीदा खान था। आने के बाद उसने इमाम की शान में कसीदा पढ़ा, उसके बाद मौला कायनात की शान बयान की, एक के बाद एक करके वो कसीदे पढ़ता रहा। जब सुना चुका ना तो इमाम ने गुलाम को इशारा किया कि इसका हदिया लिया। गुलाम एक हुजरे में गया और वहां से जरो जवाहिर की एक थैली भर के उसके हवाले कर दी। जाबिर देख रहा है ना, उसके दिल में अब बात रह गई कि मैंने तंदरुस्ती भी बयान की तो मुझे 2-4 दिरहम देकर अपनी जेब से मुझे बिठा दिया, अब हुजरे में से जरो जवाहिर की एक थैली लाकर उसके हवाले कर दी। अब इमाम क्या है, दिलों पर तसर्रुफ का हक है ना, जान रहा है कि दिल के अंदर क्या खिचड़ी पक रही है। इमाम ने एक मरतबा मुस्कुरा कर जाबिर की तरफ देखा और कहा कि जाबिर जरा इधर मेरे साथ आओ। लेकर चले जाबिर को उस हुजरे की तरफ जहां जाबिर के ख्याल के मुताबिक बहुत माल और ज़र था, जिसमें से मुझे नहीं दिया इसको दे दिया। जब पहुंचे हुजरे में लेकर, हुजरा बिल्कुल खाली था, कुछ नहीं था उस हुजरे के अंदर। इमाम फरमाते हैं जाबिर हुजरे में कुछ है? कहा नहीं मौला खाली है। हमने कहा खाली हुजरा है ना, फिर इमाम ने ठोकर मारी जमीन पे। जैसी जमीन पे ठोकर मारी, जाबिर कहता है ऊंट की गर्दन के बराबर जमीन से सोना जरो जवाहिर उबलने लगा। इतना सोना, जमीन फटी पड़ रही थी, सोना निकलने के लिए बेताब हो रहा था। इमाम फरमाते हैं, तो हैरान हुआ जाबिर ना, इमाम फरमाते हैं जाबिर जो तुम देखते हो, जो तुम जानते हो, हमारा इल्म और हमारा इख्तियार उससे कहीं ज्यादा है। अगर हम अपना सारा इख्तियार और इल्म जाहिर कर दें, लोग गुमराह हो जाएंगे। अली ने अपना थोड़ा सा इल्म जाहिर किया था, थोड़ा सा इख्तियार दुनिया के सामने रखा था, अली की खुदाई के कायल हुए लोग, अली को खुदा मान बैठे। तो अगर हम सारा इल्म और सारा इख्तियार जाहिर कर दें तो तुम लोग गुमराह हो जाओगे। जितना इख्तियार तुम्हारे सामने है ना हमारा, जितना तुम जानते हो, उससे कहीं ज्यादा पोशीदा इख्तियार और इल्म है हमारे पास, उससे कहीं ज्यादा ताकत और कुव्वत है हमारे पास। अब देखिए, ये आप जितनी रिवायतें देखेंगे ना इमाम के इख्तियारात और मौजजात दिखाने की, उसमें आपको ये जरूर नजर आएगा, अगर पूरी रिवायत आप पढ़ें तो उसमें ये जरूर होगा कि हर इमाम मौजजा दिखाने से पहले या बाद में, ये अपने इख्तियारात और इल्म का मुजाहिरा करने से पहले या बाद में 2 रकअत नमाज लोगों के सामने जरूर पढ़ते थे, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ये हमारा कमाल, ये हमारा इख्तियार, ये हमारा मौजजा तुम्हें गुमराह ना करे और तुम हमें खुदा ना समझ बैठो। ये यकीन रखना कि असल इख्तियार और कमाल अल्लाह ही का है। जब भी कोई इमाम अपने इख्तियार और अपने इल्म को वाजे करता बयान करता तो एक जुमले के साथ हर इमाम एक जुमला लाजमी बयान करता था, वला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम, कि कोई कुव्वत नहीं है सिवाय अल्लाह के, कुव्वतें सारी उसी की है, ताकतें उसी की है, इख्तियार उसी का है। तो अब इनका इल्म और इख्तियार कितना है, सारा तुम्हारे सामने आ जाए तुम गुमराह हो जाओ। इमाम जाफर सादिक इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, इमाम से बातें हैं, जो कुछ जमीन और आसमान में है उसका इल्म मेरे सीने के अंदर है। जो कुछ जन्नत और जहन्नुम है उसका इल्म मेरे पास है। जो गुजर चुका है, जो होने वाला है, वो सब मेरे इल्म में है। जो कुछ भी मा काना व मा यकूना की मंजिल पर है, वो सब उसका इल्म हमारे सीने के अंदर है। और यहाँ इमाम भी वही बयान करवा रहे हैं कि अगर हम सब कुछ जाहिर कर देना, जितना तुम्हें नजर आ रहा है इससे तो कहीं ज्यादा तसव्वुर नहीं कर सकते, जितना पोशीदा है ना उसका तसव्वुर नहीं कर सकते, जितना नजर आ रहा है, तो हम सारा क्यों नहीं आश्कार कर रहे, तुम लोग गुमराह हो जाओगे। तो अब अगर आयमा अपने सारे इख्तियार दुनिया के सामने रख दे तो लोग उन्हें खुदा समझ बैठे, इसलिए कि ये वो हस्तियां हैं जो अल्लाह के तमाम कमालात का मजहर कामिल है। अल्लाह ने जब अपनी शान दिखाना चाही, जब अपना जलवा दिखाना चाहा, जब अपनी कुदरत जाहिर करना चाही, तो इनके जरिए कुदरत दिखा रहा है, इनके जरिए अपनी शान दिखा रहा है। तो अब जिस तरह विलायत तकवीनी और विलायत तशरी रसूल के पास है, वैसे ही अली के पास है और वैसे ही हर इमाम के पास है। ये नूर विलायत एक के बाद एक करके हर इमाम के अंदर मुंतकिल होता रहा है। ये विलायत की अमानत मुंतकिल होती रही है। ये जो कुरान कह रहा है ना, कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुम किताब मुबीन, अल्लाह की तरफ से तुम्हारी हिदायत के लिए एक नूर आया, एक किताब मुबीन आई। किताब मुबीन कुरान, नूर मुफस्सरीन ने बयान किया कि पैगंबर का रसूल का नूर है। अच्छा, अब पैगंबर का नूर तो रुखसत हो गया ना, पर्दा फरमा लिया दुनिया से, अब कौन सा नूर रह गया? कुरान तो आज भी कह रहा है ना कि एक नूर आया, एक किताब मुबीन आई। ये नूरे विलायत है, पहले रिसालत की सूरत में तजल्ली दिखाता रहा, अब इमामत की सूरत में तजल्ली दिखा रहा है। लेकिन किताब मुबीन के साथ जो नूर हिदायत कर रहा है वो सिर्फ वलिय बरहक का नूर है जो हर जमाने के अंदर रहेगा। अब वलिय बरहक वो है, इमाम मासूम वो है, जो पूरी कायनात पर अल्लाह की तरफ से हुज्जत है। पूरी कायनात का वली है ना, तो हुज्जत है हर शय पर। जब हर शय पर हुज्जत है, हाकमियत है, तो हर शय का एम भी तो होगा ना। इसलिए सूरह यासीन के अंदर क्या फरमाया अल्लाह ने, वकुल्ला शयइन अहसैनहू फी इमामिन मुबीन, हमने हर शय, कोई शय बची नहीं कायनात की, हर शय, जब कुल का लफ्ज आ गया तो उसका मतलब है कुछ नहीं बचा, कोई जर्रा नहीं बचा, हर शय को इमाम मुबीन में अहसा कर दिया है। यानी अब हर चीज कायनात की इमाम के इताअत के दायरे में है, हुज्जत के दायरे में है, हाकमियत के दायरे में है, इल्म के दायरे में है। तो अब जब हर चीज पर हुज्जत है वली, सूरज को पलटा दे तो क्यों शक करते हो, सितारे को चौखट पे उतार ले तो क्यों ऐतराज होता है, चांद के दो टुकड़े कर दे तो क्यों शक करते हो। वली है ना, अल्लाह ने इख्तियार दिया है, कायनात के जर्रे जर्रे पर विलायत है। और कल भी हम बयान कर रहे थे कि विलायत के लिए सबसे अहम चीज, सबसे अहम इल्लत क्या है, इल्म। कैसा है देखिए, किसी ने एक शख्स आया इमाम अली इब्ने मूसी रज़ा अलैहिस्सलाम के पास और आकर उसने कहा इमाम रजा के पास आकर फरमाता कहने लगा कि मौला क्या इमाम सितारों की तादाद का इल्म भी रखता है। सवाल क्या कर रहा है कि मौला क्या इमाम सितारों की तादाद का इल्म रखता है। इमाम फरमाते हैं कि देखो ये कैसे हो सकता है, चीजों का इल्म उसके सामने जाहिर करे और कुछ का पोशीदा कर दे। जब अल्लाह ने उस हस्ती को हुज्जत बनाया है ना, हुज्जत भी कैसी कि कायनात की हर शय पर उसकी इताअत वाजिब है, कायनात की हर शय पर उसकी हाकमियत है। तो अब कैसे मुमकिन है कि कुछ चीजों का इल्म अता करे और कुछ का पोशीदा रखे। जिस चीज का वली या इमाम को इल्म नहीं है वो इमाम के दायरा हुज्जत से बाहर हो गई ना। जब इमाम को उसका इल्म ही नहीं है तो कैसी हाकमियत, कैसी विलायत, कैसी उज्जत, कैसा इख्तियार? इख्तियार किस पर होगा? जिसका इल्म होगा। तो मुमकिन नहीं है कि पूरी कायनात पर हुज्जत करार दे और कुछ इल्म जाहिर करे, कुछ पोशीदा नहीं। जब कायनात के जर्रे जर्रे पर हाकिम है तो कायनात के जर्रे जर्रे का इल्म है। अब उसमें चाहे नबातात हो, जमादात हो, हैवानात हो या इंसान, हर शय इमाम की इताअत और हुज्जत के दायरे में है। अगर न हो, अगर हर चीज का इल्म ईमान को ना होता, हर चीज ईमान की हुज्जत के दायरे में ना होती, तो पहाड़ को इशारा करते तो पहाड़ अपनी जगह ना छोड़ देता, दरख्त को इशारा करते तो दरख्त खींचकर चला ना आता ईमान की तरफ, सितारे को इशारा करके चौखट पर ना उतार लेते, दरिंदा जो इंसान को खून का प्यासा दरिंदा, वो इताअत गुजार बनकर मासूम के कदमों में ना बैठ जाता। ये तमाम चीजें वाज़ेह कर रही है कि हमारा वली है, हमारा हाकिम है। पहाड़ को जगह से हिलाया, सितारे की जगह तब्दील की, शजर को खींच कर बुलाया, दरिंदे को कदमों में बिठा दिया, तो हाकिमियत है तो किया ना, इल्म और विलायत रखता है तो किया ना। देखिए इमाम जामिन को इमाम रजा जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, इनको जामिन आहू क्यों कहा जाता है? जामिन आहू कहते हैं ना इमाम रजा को, क्यों? हिरनी का मशहूर वाक्य है, जिनके जहनों में नहीं है उनको दोहराते चलूं, कि एक हिरनी को शिकारी ने पकड़ लिया। इमाम से इल्तिजा की उस जानवर ने कि मौला मेरा बच्चा भूखा है, मैं उसे दूध पिलाकर अभी वापस पलट कर आऊंगी, आप मेरे जामिन बन जाए। इमाम ने शिकारी से कहा कि इसे जाने दे, ये बच्चे को दूध पिलाकर वापस आ जाएगी। शिकारी हैरान हुआ, उसकी समझ में नहीं आया कि जानवर की जमानत कैसे ले रहे हैं, कैसे कह रहे हैं कि वो जाके वापस आ जाएगी। नहीं जानते, हुज्जत है, विलायत है इनकी, इख्तियार रखते हैं। तो आप कह रहा है कि ये कैसे होगा? इमाम फरमाते हैं कि मैं तुझे जमानत दे रहा हूं ना कि ये पलट कर आएगी, और अगर नहीं आई मैं तुझे इसकी पूरी कीमत अदा करूंगा। छोड़ दिया उसने हिरनी को, हिरनी गई, बच्चे को दूध पिलाकर वापस पलट कर आई। वली से किया हुआ वादा है ना, निभाना तो है, और आते ही इमाम के कदमों पर सर रख दिया। तो अब ये जामिन आऊ है ना, हिरनी की जमानत देने वाला, तो अब कोई चीज इसकी विलायत की हद से बाहर नहीं है। इसलिए इमाम ने फरमाया कि कैसे हो सकता है कि अल्लाह हमें हर चीज पर हुज्जत करा दे और कुछ इल्म हम पर जाहिर करे और कुछ पोशीदा करे। नहीं, हुज्जत तमाम नहीं होती है। फिर दूसरी चीज ये कि इमाम जो मासूम अनिल खता है, हर गुनाह हर खता से पाक है, उसका सबब भी उसका इल्म है। आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि शायद वली या इमाम जो मासूम होता है वो इसलिए गुनाह से बचा रहता है कि उसमें गुनाह करने की अल्लाह ने सलाहियत नहीं रखी होती है, या ये कि उसे पता ही नहीं होता कि गुनाह क्या है, खता क्या है, बुराई क्या है, वो इल्म ही नहीं रखता गुनाह के बारे में। देखिए फरिश्ता ऐसा ही मासूम है कि फरिश्ते के अंदर अल्लाह ने नफ्स नहीं रखा, फरिश्ते के अंदर अल्लाह ने ख्वाहिश नहीं रखी। फरिश्ता नहीं जानता गुनाह क्या है, फरिश्ता नहीं जानता खता क्या है, बुराई क्या है। तो अब फरिश्ता वो मासूम है जो मजबूर है मासूम रहने पर, जब उसे पता ही नहीं गुनाह क्या है तो गुनाह कैसे करेगा। लेकिन वली या इमाम ये मजबूर मासूम नहीं है, ये इल्म रखते हैं, ये इनके अंदर गुनाह की ऐसा नहीं है कि गुनाह की सलाहियत नहीं है, नफ्स है ना, लेकिन पाकीजा नफ्स है। और इल्म कैसा है? गुनाह हर खता हर बुराई के बारे में जानते हैं, उसकी हकीकत क्या है, उसका फलसफा क्या है, उसका नतीजा क्या होगा, चूंकि नताइज से अच्छी तरह बाखबर है, इसलिए इल्म की बुनियाद पर अपने आप को गुनाहों से बचाए रखते हैं। इस्मत की बुनियादी वजह माजूरी या मजबूरी नहीं है, इस्मत की बुनियादी वजह इनका इल्म है। अगर ना जानते कि गुनाह क्या है, बुराई क्या है, खता क्या है, तुम्हारी हिदायत कैसे करते हैं, तुम्हें कैसे बताते हैं कि ये गलत है, ये बुराई है, ये गुनाह है, इसका ये नतीजा है, इसकी ये सजा है, इसका ये फलसफा है, इसकी ये हकीकत है, तो तुम्हें बताया ना, खुद जानते हैं तो तुम्हें बताया ना। तो इस्मत की बुनियादी वजह भी इल्म है। अच्छा, अब वली के लिए इख्तियारात और इस्मत की वजह क्या तय पा रही है? इल्म। और इल्म कैसा है? कायनात में देखिए हर चीज का इल्म अल्लाह ने कहां रखा है? कुरान के अंदर। कुरान के लिए क्या इरशाद हो रहा है? लेकिन तेजी से कदम बढ़ाते रहिए और बैठते जाइए, क्योंकि इतना वक्त नहीं है कि आप जरा सा तायुन करें पहले। जहाँ जगह मिल रही है वहाँ बैठता जाए कि पसंद की जगह, मुनासिब जगह, ये सब तय करना हो तो आप वक्त पे आया कीजिए। अब मजलिस के दरमियान में आप सोचते हुए खड़े रहे तो जहाँ जहाँ जगह मिल रही है प्लीज बैठिए और मजलिस का तसलसल न खराब होने दें। सारी कायनात का इल्म अल्लाह ने कहाँ रखा है? कुरान क्या कह रहा है? वला रतबिन वला याबसिन इल्ला फी किताब मुबीन। कोई खुशकोतर ऐसा नहीं है जिसका इल्म किताब मुबीन के अंदर ना हो। यानी हर खुशकोतर का इल्म कहाँ है? किताब मुबीन में, कुरान मजीद के अंदर। कायनात के जर्रे जर्रे का इल्म कुरान मजीद के अंदर। कुरान सारा इल्म कुरान में जमा, और कुरान कहाँ? वली और मासूम इमाम के सीने में जमा। सारा इल्म किताब मुबीन में, किताब मुबीन इमाम मुबीन के सीने में। अब वो इमाम मुबीन जो कायनात के जर्रे जर्रे का इल्म रखने वाली कुरान को रखने वाले कुरान को अपने सीने के अंदर लिए हुए ना, ऐसे ऐसे लोग थे उस इमाम को, उस अली को कुरान की दावत दिया करते थे। वो अली जो कुरान का इल्म अपने सीने में लिए हुए हैं उसे दावत देते थे कुरान की तरफ। ये वो लोग थे जिन्हें समझ में नहीं आता था कि कैसे अपनी जहालत छुपाए। कुछ न जानने के बावजूद जाहिर ये करते थे कि हम इल्म की आला मंजिल पर हैं। सिफीन के मैदान में एक शामी निकला लश्कर से, मालिक लश्कर से एक शामी निकला कुरान की तिलावत करता हुआ। अम्मा ये तसालूना अनिल नबा लजीम लजी हम फी है मुख्तलिफून। अब जब कुरान की तिलावत करता हुआ निकला ये बताते हुए कि मैं हाफिज कुरान हूँ, मैं कुरान जानने वाला हूँ, इमाम के लश्कर से भी एक निकला और कहा मौला मैं इसका मुकाबला करता हूँ। मौला फरमाते नहीं, ये तेरे काबू में आने वाला नहीं है। ये जो लिबादा ओढ़ कर आ रहा है ना कि मैं हाफिज कुरान हूँ, ये लिबादा इसका वो है दीन की ठेकेदारी वाला, तो ये तेरे काबू में तो आएगा नहीं, इससे मैं खुद निपटूंगा। अब इमाम क्या खुद निकल कर आए सामने और एक मरतबा इमाम फरमाते हैं उसको मुखातिब करके, कौन सी आयत पढ़ रहा था, किस आयत की तिलावत करता हुआ आ रहा था? अम्मा ये तसाल उना अली नबाय लजीम लजी हम फी मुख्तलिफून, कि ये तुमसे सवाल करते हैं उस अजीम खबर के बारे में जिसमें ये इख्तिलाफ में पड़ गए। इमाम पूछते हैं ये नबाय अजीम, ये अजीम खबर कौन सी है? अब जवाब मालूम हो तो बताए ना। कुरान तो, इमाम फरमाते हैं कुरान तो इनके हलक से नीचे नहीं उतरा, कुरान दिलों की बहार है लेकिन इनके हलक से नीचे नहीं उतरा। ये जितने हाफिज कुरान सारा कुरान से जबान तक है, दिलों में उतरा ही नहीं। अब जब दिलों में उतरे ना कुरान तो फिर इल्म तो नहीं, इल्म की मंजिल तो तय नहीं कर पाते ना तुम, न तुम्हारा दिल रोशन होता है। तो अब इमाम फरमाते हैं बीबी बैठ जाइए खुदा का वास्ता। मौला फरमाते हैं ये अजीम खबर, ये नमाज की खबर है, रोजे की खबर है, जकात की खबर है, किस चीज की खबर है ये तो बता दे, कोई जवाब हो तो बताए। मौला फरमाते हैं वो खबर जिसमें तुम लोग इख्तिलाफ में पड़ गए, कुछ तो मालूम होगा ना उस खबर के बारे में। कोई जवाब नहीं। जब कोई जवाब नहीं आए ना फिर मौला फरमाते हैं सुन खुदा की कसम, वो नबाए अजीम मेरी जात है, वो अजीम खबर मैं हूँ। तुम लोगों ने रसूल की जात में इख्तलाफ नहीं किया, नमाज में इख्तलाफ नहीं किया, मैं वो अजीम खबर हूँ जो रसूल ने तुम्हें दी गदीर खुम के मैदान में, लेकिन तुम लोगों ने इख्तलाफ किया तो नबाए अजीम मेरी जात है, और नबाए अजीम ना होती ना तो रसूल की रिसालत दायर बना लग जाती। मैं हूँ अजीम खबर। किस चीज के बारे में मुसलमानों ने इख्तलाफ किया? किसी अल्लाह के किसी हुक्म पर इख्तलाफ है मुसलमानों में? सिर्फ अगर इख्तलाफ है तो अली की जात पर है ना। तुम्हारा फरमाते हैं कि मैं हूँ वो नबाए अजीम, वो अजीम खबर जिसके मुतालिक सवाल करते हो और इख्तलाफ में पड़ गए, वो मेरी जात है। अब देखिए ये सूरह नबा की शुरू की आयत है। सूरह नबा की आखिरी आयत में कयामत का मंजर बयान किया जा रहा है कि कयामत के दिन जब काफिर अपने अंजाम को देखेगा तो एक मर्तबा पुकार कर कहेगा यकुल काफिर हो या लैतनी कुंता तुराब, कि काफिर कहेगा कि काश में तुराब होता, काश में मट्टी होता। दुनिया में भी कुछ थी ऐसी हस्तियां जो अपने अमाल में इतने शर्मिंदा हुए कि कहते थे काश में फला जानवर होता, फला हैवान होता, लेकिन अब जो हूं ना ये ना होता। लेकिन वहां जब काफिर देखेगा ना अपने अंजाम को तो वो कहेगा कि काश मैं तुराब होता। तुराब का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया? जब रोजे महशर देखेगा कि हर तरफ अबू तुराब का इख्तियार और हाकमियत है तो फिर तुराब बनने ही की तो ख्वाहिश करेगा ना कि काश मैं तुराब होता तो अबू तुराब का दस्ते शिफात मेरे सर पर भी आ जाता, मैं तुराब होता। कि जब देखेगा हर तरफ हाकमियत ही अबू तुराब की है तो अगर तुराब होता, तुराब से बना होता तो फिर शायद अबू तुराब की शिफात मेरे काम आ जाती। तो आप मौला उसको मुखातिब करके क्या कह रहे हैं? ये नबाय अजीम, ये जो तिलावत करता आ रहा हूं ना, ये तिलावत तुम्हारे दिलों में उतरा ही नहीं कुरान, वरना जान लेते कि हकीकत क्या है। ये नबाय अजीम कुछ नहीं है सिवाय मेरी जात के, हटा दो मेरी जात दरमियान से, इख्तलाफ खत्म। तो जिस चीज में तुम इख्तलाफ में पड़ गए ना वो मेरी जात है। अब ये बोलो अली के मकाम और मर्तबे को ना पहचानने वाले लोग अजीब अजीब सवाल लेकर आ रहे थे मौला के पास अपनी इल्मियत जाहिर करने के लिए और अली को नीचा दिखाने के लिए, कि कोई तो सवाल ऐसा होगा ना जिस पर अली लाजवाब होकर खामोश हो जाएंगे। इसलिए एक सवाल करने वाला आया और आकर इमाम से कह रहा है यारी आपने खुदा को देखा है, अब सवाल देखिए क्या कुरान पढ़ने वाला हर शख्स ये नहीं जानता कि अल्लाह ने कितना वाज़ह तौर पर मूसा से कहा था, जब मूसा ने कहा था कि बार इलाहा तुझे देखना चाहता हूँ, तेरे दीदार की ख्वाहिश है, तो अल्लाह ने कितना कहा लंतराने नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। खुदा को ना देखना अबदी है, ना कोई दुनिया में देख सकता है ना आखिरत में देखा जाएगा। तो अब जो चीज जिसका ना देखना अबदी है उसके मुताबिक सवाल पूछ रहे हैं ना, कि अब ऐसा सवाल पूछो कि कहीं तो लाजवाब होकर खामोश हो जाए कि आपने खुदा को देखा है, अब क्या जवाब देंगे? लेकिन जो जवाब ना दे सके फिर अल्लाह का वली किस बात का हो गया, फिर अल्लाह के इल्म का नुमाइंदा कैसे हो गया? अब जब पूछा ना कि क्या आपने खुदा को देखा है, मौला फरमाते हैं तू क्या समझता है मैं अनदेखे खुदा की इबादत करता हूँ, तू देखने की बात करता है, मैंने कायनात में कोई शे ऐसी देखी नहीं जिससे पहले खुदा को ना देखा हो, जिसके बाद खुदा को ना देखा हो, जिसके साथ खुदा को ना देखा हो। हर कायनात की हर शे उसके साथ भी खुदा को देखा है, उससे पहले भी खुदा को देखा है, उसके बाद भी खुदा को देखा है। अब चुप हो गया और हैरान होकर कह रहा है याली आपने खुदा को देखा है, कैसा कैसे देखा और कैसा पाया? अब मौला जानते हैं ना कि कम इल्म कम फहम है, और जाकर न जाने इस बात को किस अंदाज में समझेगा और किस अंदाज में फैलाएगा, इसलिए उसका शक दूर करके फरमाते हैं कि जो सर की दो आंखें है ना इनसे नहीं देखा जाता खुदा, कि तू ये समझ ले कि जिसके सर पर दो आंखें हैं वो खुदा को देख लेगा। सर की दो आंखों से अगर खुदा देखा जाता तो बनी इसराइल के वो 70 उलमा देख लेते जो कोहे तूर पर मूसा के साथ गए थे। सर की दो आंखों से खुदा नहीं देखा जाता, खुदा जिसको अपना दीदार कराना चाहता है उसके दिल की आंख को रोशन करता है। खुदा कोई मुजस्सम वजूद नहीं कि तू आंख से देख लेगा, ये नूर है जो दिल में उतारा जाता है। सलावत पे मोहम्मद। मुजस्सम सूरत तो है नहीं ना, नूर है, तो नूर दिखाई कैसे देगा? नूर तो दिल के अंदर उतरेगा ना। तो अब जिसका दिल रोशन होता है, जिसके दिल की आंख रोशन होती है वो अल्लाह को देख सकता है, और जो अल्लाह का दीदार कर ले दिल की आंख से, दिल रोशन हो, तो फिर वो मार्फत की वादियों में चला जाता है और जाते जाते उस मकाम पर पहुंचता है कि जहां पर फिर वो अल्लाह से कहता है कि बार इलाहा तू मुझसे क्या चाहता है, और अल्लाह पलट कर उससे कहता है बंदे तू बता तू क्या चाहता है। जब ये कब होता है? जब तुम्हारे दिल की आंख रोशन होती है। देखिए दिल को कुरान ने और अहले बैत ने मरकज करार दिया है। इल्म तुम्हारी जबान पर नहीं होता, इल्म तुम्हारे दिमाग में नहीं होता, वो इल्म जो सिर्फ दिमाग में हो ना वो सिर्फ फसाद फैलाता है, फितना फैलाता है, क्योंकि सिर्फ खाली दिमाग चल रहा होता है। इल्म की असल जगह क्या है? तुम्हारा दिल। जो इल्म तुम्हें फायदा देता है ना, वो इल्म कौन सा होता है? जो तुम्हारे दिल के अंदर रासिख होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह ने कुरान में अक्ल इस्तेमाल करने का, तफक्कुर करने का, ताकुल करने का बहुत हुक्म दिया है कि अक्ल इस्तेमाल करो, गौर और फिक्र करो। लेकिन अक्ल और दिमाग ये एक मरहला है, मंजिल नहीं है। मंजिल क्या है? तुम्हारा दिल। मरकज क्या है? तुम्हारा दिल। अगर मार्फत चाहते हो खुदा की, उसके मुस्तफा बंदों की, तो वो भी दिल ही के जरिए हो सकती है। मार्फत के लिए तुम्हें या बसीरत चाहिए या फिर दिल चाहिए। तो अब दिल को मरकज करार दिया गया, और दिल की आंख जब रोशन हो जाए तो फिर तुम अल्लाह का जलवा देख सकते हो, फिर तुम अल्लाह का दीदार कर सकते हो। लेकिन दिल की आंख रोशन कब होती है? जब तुम्हारे दिल में इल्मे कुरान होता है। अगर दिल में कुरान, इल्मे कुरान नहीं है, अगर कुरान सिर्फ जबानों पर है ना, जिससे मौलाना फरमाया कि इनके हलक से नीचे नहीं उतरा, तो अगर सिर्फ जबानों पर है, दिल में नहीं उतरा, तो वो इल्मे कुरान जब दिल की खिड़की बंद है, दिल के अंदर नहीं उतरा, तो फिर आप तुम्हारे लिए बेकार है, तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। हाँ, जब दिल में इल्मे कुरान हो तो फिर इल्म के साथ साथ इश्क रसूल भी होता है, इश्क अहले बैत भी होता है। अगर दिल में इल्मे कुरान नहीं है तो ना इश्क रसूल होगा ना इश्क अहले बैत होगा। इल्म क्या है? इल्म इश्क अहले बैत है। इल्म और इश्क वैसे तो दो अलग अलग रास्ते हैं ना, दो अलग अलग चीजें हैं। अच्छा है क्या? देखिए, मोहब्बत किसे कहते हैं? मोहब्बत हुसूल तलब का नाम है। यानी आप जिससे मोहब्बत करते हैं ना, आप चाहते हैं कि वो आपको मिल जाए। अगर आपके पास हो, जिससे आप मोहब्बत करते हैं वो आपके पास है, तो आप ये चाहते हैं कि आपसे जुदा ना हो, ये है मोहब्बत। और जहां तमाम मोहब्बतें कुर्बान करने का हौसला पैदा हो जाए, वो मंजिल है इश्क की। जितनी मोहब्बतें हैं आपकी, जब तक वो मोहब्बतें कुर्बान करने का हौसला नहीं रखोगे, अल्लाह तक नहीं पहुंच पाओगे, इश्क की मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। तो ये इल्म और इश्क वो है कि जो अलग अलग रहते हैं। अगर इश्क है, इल्म नहीं है, तो इश्क गुमराही की तरफ लेकर जाएगा। अगर इल्म है और इश्क नहीं है, तो फिर बेताबी नहीं होगी, तड़प नहीं होगी। वो बगैर तड़प के वो इल्म, वो भी तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। तो इल्म और इश्क दो अलग चीजें हैं, लेकिन इनका जमा होना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। जब इल्म और इश्क जमा हो जाते हैं, करबला वजूद में आती है। करबला मजमुआ है इल्म और इश्क का। जहां इल्म है, इल्म इमाम। और इश्क कैसा है? इश्क कैसा है कि इमाम फरमाते हैं कि खुदा की कसम, अगर मेरा कोई भी मर्जा मावा ना होता, ये जो 72 मेरे जानिसार देख रहे हो ना, इनमें से एक भी ना होता, तब भी खुदा की कसम मैं हक के रास्ते में आगे बढ़ता, मैं अपने कदमों को पीछे ना हटाता। ये इश्क की मंजिल है कि जब मैं इश्क की मंजिल रास्ते में, हक के रास्ते में आगे बढ़ता ना, तो फिर मुझे किसी साथी, किसी नासिर की जरूरत नहीं है। इश्क के रास्ते में मैं तन्हा आगे बढ़ता, हक की तरफ मैं अकेला आगे जाने को तैयार होता। अगर मेरा कोई भी नासिर ना होता, तब भी मैं आगे बढ़ता, तब भी मैं हक के लिए कयाम करता। अगर करबला ना होती, ये लहजे ना होते, ये सदाएं ना होती, ये ललकार ना होती। 14 सदियों से करबला पैगाम दे रही है, करबला का पैगाम 14 सदियों से गूंज रहा है ना। हालांकि जालिमों ने, जालिम ताकतवरों ने कितनी कोशिश की करबला को दबाने की, कितनी कोशिश की कि करबलाइयों को हटा दो रास्ते से, लेकिन करबला की पुकार आज भी गूंज रही है, करबला का पैगाम आज भी गूंज रहा है। और क्यों ना गूंजे? ये कैसे मुमकिन है? अली की वली बेटी भरे बाजार में जालिम को ललकारे और उसकी ललकार कयामत तक सुनाई ना दे। कैसे मुमकिन है कि अली की बेटी नस्लों तक एक पैगाम पहुंचाना चाहे और उस पैगाम को दरमियान में रोक दिया जाए? नहीं, वली की बेटी है, विलायत के मनसब पर है, इसका पैगाम अगर नस्लों के लिए है तो कयामत तक नस्लों तक जाएगा। आज तक करबला जिंदा है, वो करबला جہاں علی اصغر نے مسکراہٹ سے وار کیا، وہ کربلا جہاں علی اکبر نے اپنی زندگی کی آخری اذان دی، وہ کربلا جسے عباس نے اپنے خون سے سجایا، کربلا میں حسین کیسے کیسے معروخوں کو لے کر آیا۔ جتنا ایک شخص کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے نا، اس سے کہیں زیادہ محبت تھی حسین کو علی اکبر سے۔ اس لیے کہ ایک تو کڑیا جوان بیٹا تھا، دوسرا نانا کی شبی تھا، تو ایک بیٹے سے باپ کو جتنی محبت ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ حسین کو علی اکبر سے محبت تھی۔ اور جیسی محبت علی اکبر سے تھی نا، ویسی ہی محبت اپنے یتیم بھتیجے قاسم سے تھی۔ اس لیے کہ بھائی کی نشانی ہے۔ کربلا میں جب شب عاشور امام اپنے جانساروں کو، اپنے مجاہدوں کو لے کر مقتل کی طرف آئے ہیں، تو وہاں پر امام نے ایک ایک مجاہد کو اس کی شہادت کا مقام بتایا ہے، تم یہاں گھوڑے سے گرو گے، تمہیں یہاں نیزہ لگے گا، تمہیں یہاں برچی لگے گی، تم یہاں گرو گے، تمہاری شہادت کی یہ جگہ ہے، تمہارے لاشے کا یہ مقام ہے، تمہارے زخمی ہو کر گرنے کی یہ جگہ ہے۔ ایسے میں قاسم کا سن کتنا ہے؟ بعض روایت کے مطابق 11 برس، بعض کے مطابق 13 برس۔ 13 برس بھی اگر ہم مان لیں تو بچہ کم سن ہے نا۔ اب اس کے مقابلے میں طویل قامت مجاہد ہیں، زہیر ابن قین ہیں، مسلم ابن اوسجہ ہیں، حرب ابن مظاہر ہیں، عباس ہیں، علی اکبر ہیں۔ اب ان کے درمیان بچہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ اپنے پنجوں کے بل پر اونچا ہونے کی، کہ پنجوں کے بل پر اونچا ہو کر سامنے آنے کی کوشش کر رہا ہے کہ مجھ پر چچا کی نظر پڑے اور چچا مجھے بتا دے کہ تم کہاں پر شہید ہو گئے۔ کافی دیر جب بھی کسی شہید کا مقام بتا کر آگے بڑھتے تھے نا، تو قاسم یہی کوشش کر رہا ہوتا تھا، کسی طرح چچا کی نظروں میں آ جاؤں اور چچا مجھے بتا دے۔ نہیں بتایا امام نے۔ ایک مرتبہ جب سب کی جائے شہادت بتا چکے، قاسم خود آگے بڑھا، کہا چچا سب کا مقام شہادت بتایا ہے، کیا میں شہید نہیں کیا جاؤں گا؟ امام نے ایک مرتبہ پوچھا، قاسم شہادت کو کیسا پاتے ہو؟ دیکھیے 13 برس کا بچہ ہے، کمسن ضرور ہے، علی کا پوتا ہے، بلاغت اور فصاحت دیکھیے۔ شہزادہ کہتا ہے کہ چچا موت کو شہد سے زیادہ شیریں پاتا ہوں۔ شہزادہ موت کا ذائقہ بتا رہا ہے، شہد سے زیادہ شیریں۔ امام فرماتے ہیں کہ قاسم تم بھی شہید کیے جاؤ گے، اور شہیدوں میں تمہارا تو کیا، علی اصغر کا بھی نام ہے۔ علی اصغر کا نام سنا نا، قاسم ایک مرتبہ گھبرا گیا۔ کیا سوچ کر گھبرایا؟ کہ علی اصغر تو خود جا نہیں سکتا میدان قتال میں، تو کیا فوج یزید آئے گی خیموں میں؟ ہاشمی غیرت، ایک مرتبہ ہاشمی غیرت کو بال آیا نا، گھبرا گیا، کہا چچا علی اصغر کیا فوج یزید خیموں میں آ جائے گی؟ قاسم کو گوارا نہیں تھا نا، دل گھبرا گیا ایک دم۔ حسین قاسم کی گھبراہٹ کو محسوس کر گئے کہ اب کس طرح یہ ہاشمی غیرت ابال کھا رہی ہے نا۔ اس لیے امام فرماتے ہیں کہ نہیں، میں علی اصغر کو خود لے کر جاؤں گا پانی پلانے کے لیے، وہاں تیر لگے گا۔ اب گویا ایک طرح سے تسلی دے دی امام نے قاسم کو کہ نہیں فوجیں نہیں جائیں گی۔ امام اس سے آگے بیان نہیں کر رہے کہ قاسم علی اصغر کے لیے تو فوجیں نہیں جائیں گی، لیکن اس کے بعد خیموں کو آگ لگانے فوجیں جائیں گی، اور صرف آگ نہیں لگے گی، سیدانیوں کی چادریں بھی چھینی جائیں گی، مال و اسباب بھی لوٹ لیا جائے گا۔ قاسم کو نہیں بیان کیا قاسم کے سامنے۔ اب قاسم مطمئن ہے کہ فوجیں خیمے میں نہیں جائیں گی اور میں شہید ہو جاؤں گا۔ عاشور کا دن آیا، ایک کے بعد ایک انصار جا رہے ہیں، اصحاب جا رہے ہیں۔ اصحاب اور انصار کی موجودگی میں ممکن نہیں تھا شہزادہ چلا جاتا، لیکن جب بنی ہاشم کے جوانوں کی باری آئی نا، اب شہزادے کا کیا کیفیت کیا ہے؟ جب کسی شہید کا لاشا آتا، عجیب انداز سے اجازت طلب کرتا تھا، اپنے دونوں ہاتھ چچا کے قدموں پر رکھ کر کہتا تھا چچا آپ مجھے بھیج دیجئے، چچا آپ مجھے جانے دیجئے۔ اور حسین ایک مرتبہ جب قاسم کے چہرے پر نگاہ ڈالتے تو بے اختیار بھائی کی یاد آتی تھی نا، حسن کی نئے چہرہ نگاہوں میں پھر جاتا تھا۔ था, फौरन भेज देते थे कासिम को, कासिम तुम खेमे में जाओ। गवारा नहीं था भाई की निशानी को मक्तल में भेजना। जब किसी सूरत इजाजत नहीं मिली कासिम को, एक मरतबा कासिम परेशानी की कैफियत में बैठा है कि किस तरह चाचा से इजाजत तलब करूं। तावीज का ख्याल आया जो बाजू पर बांधा था बाप ने, फौरन खोला उस तावीज को, बाप की वसीयत लिखी थी चाचा के लिए, खुशी खुशी दौड़ा इमाम की खिदमत में और जाकर वो कागज का पुर्जा दे दिया इमाम के हाथ में। इमाम ने जो निगाह दौड़ाई है तहरीर पर, हुसैन के लिए वसीयत क्या थी भाई की कि देखो जब कर्बला में कुर्बानियों का वक्त आए, मेरे कासिम को मेरी तरफ से कुर्बान कर देना, मेरे मुझ पर जो लगा हुआ इल्जाम है ना वो मेरा बेटा देगा, जो जंग मैं नहीं कर सका मेरी हसरत मेरा बेटा निकालेगा, ये जंग करेगा। भाई की वसीयत देखी, न जाने क्या क्या याद आया इमाम को। मदीने में भाई के साथ गुजरा हुआ बचपन भी, भाई के साथ गुजारे हुए जिंदगी के दिन, और फिर आखिर में भाई का तीरों से छलनी जनाजा, आंखें अश्कबार हो गई, रोते जाते हैं, कासिम को मैदाने कतार के लिए सजाते जाते हैं। जब भेजा है ना मैदाने कतार की तरफ, एक मरतबा तो लगा कि भाई हमेशा के लिए बिछड़ गया, जुदा हो गया। कर्बला में सिर्फ दो ऐसे जानिसार हैं कि जिनको रुखसत करने के बाद उनकी सवारी के पीछे भी दौड़े हैं इमाम, एक अली अकबर, दूसरा कासिम। जिस वक्त कासिम मैदान खिताब में पहुंचे जंग के लिए, सामने लश्कर से एक एक सिपाही आता था, जब एक एक सिपाही आ रहा था ना, कासिम उसको तहर तहर करते जा रहे थे। अली का पोता है ना, शुजात तो दिखाएगा, एक एक करके तहर तहर हो रहे हैं। एक मरतबा हमारे साथ ने एक बड़े शामी सरदार से कहा, शुजात बड़ी मशहूर थी उसकी, कि तू जा, तो वो बिगड़ कर कहने लगा, मैं इतना बड़ा सरदार इस कमसिन बच्चे के मुकाबले पर जाऊंगा, इसके लिए तो मेरा एक बेटा काफी है। चार बेटे थे उसके, एक एक करके चारों को भेजा, चारों तहर तहर कर दिए। अब एक मरतबा गुस्से में बिफर कर खुद आया कासिम के मुकाबले में, जब खुद आया ना, इमाम ने उस सरदार को आते हुए देखा, इमाम ने अल्लाह की बारगाह में हाथ बुलंद कर दिए और इमाम फरमाते हैं, बार इलाहा कासिम की लाश के टुकड़े तो उठाऊंगा, लेकिन एक एक सिपाही के सामने मेरे कासिम को शिकस्त ना हो, हाशमी शुजात की इज्जत का सवाल है। इमाम की दुआ मुस्तजाब हुई ना, उस शामी सरदार को भी तहे तहे कर दिया कासिम ने। अब जब सरदार मारा गया ना, उमर साहब ने कहा ये ऐसे काबू नहीं आएगा, चारों तरफ से इसे घेर लो। चारों तरफ से जब यतीम हसन को घेरा गया है, फिर शहजादा घोड़े पर नहीं रह सका, फिर जख्मी होकर गिरा, या अम्मा हुआ दरिकनी, चाचा मेरी मदद करो। जितनी बेताबी से हुसैन कासिम के इस्तगासे पर लपके है, किसी शहीद की आवाज पर नहीं दौड़े, लेकिन उसके बावजूद इतनी देर हो गई कि जब कासिम के लाशे पर पहुंचे, यतीम हसन का लाशा पामाल हो चुका था। उधर फरमा को खबर मिल गई कि मेरा बेटा शहीद हो गया। अब मुंतजर थी माँ, जैसे हर शहीद का लाशा आया है, मेरे यतीम का, मेरे कासिम का लाशा भी आएगा। मुंतजर थी ना माँ, लेकिन हुसैन जब खैमे में आए, उस पर कोई लाशा नहीं था, हाथों पर कोई लाशा नहीं था, सिर्फ एक गठड़ी थी जिसे सीने से लगाए हुए थे। फरवा ने आगे बढ़कर कहा, मौला हर शहीद का लाशा उठाकर ले आए, मेरा कासिम इस काबिल न था।